राजकीय तथा धर्म प्रयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लेती रही थी। सन 877 से लेकर सन 1000 तक वर्मन वंश के कोई 7 राजा सिंहासनारूढ़ हुए। इस अवधि में कंबोडिया की राजकीय तथा धार्मिक प्रगति उत्साहवर्धक गति से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने देश की सीमा का विस्तार दक्षिण चीन तक पहुंचा दिया, साथ ही धार्मिक प्रसार प्रयासों को भी भरपूर बढ़ावा दिया। इंद्र वर्मन ने कई भव्य मंदिर बनवाए और इंद्र तड़ाग खुदवाया। यशोवर्मन ने महाकाव्य पर एक टीका स्वयं लिखी। शिवपुरी में एक महाविद्यालय खुलवाया। कितने ही आश्रम बनवाए।
हर्ष वर्मन का बनाया हुआ मंदिर नामवॉक की पहाड़ी के समीप है।
इस अवधि में त्रिभुवनेश्वर स्वामी शिवसोम आदि विद्वानों द्वारा धर्म विस्तार के लिए किए गए अथक प्रयास भी उल्लेखनीय हैं।
उन दिनों शैव और बौद्ध धर्म की अच्छी प्रगति होती रही थी और उन्हें कंबोडिया निवासी अपनी रुचि के अनुकूल अपनाते रहे हैं।
यशोवर्मन 910 में स्वर्गवासी हुए।
उनके उपरांत राजेंद्र वर्मन और जय वर्मन पंचम का नाम आता है।
सन 1002 में सूर्य वर्मन प्रथम का शासन था। सन 1049 में उसका पुत्र उदयादित्य वर्मन सिंहासनारूढ़ हुआ। सूर्य वर्मन द्वितीय 1112 में गद्दी पर बैठे। कंबोडिया का अंतिम हिंदू राजा जयवर्मन सप्तम था।
13वीं सदी में स्याम के राजा उस पर भारी आक्रमण करने लगे थे।
16वीं शताब्दी में इन आक्रमणकारियों का आधिपत्य भी हो गया। तब से अब तक स्यामी राजाओं के बौद्ध धर्मानुयायी वंशज उस देश पर राज्य कर रहे हैं। कंबोडिया में पहले वैष्णव धर्म पहुंचा था, पीछे बौद्ध धर्म गया। वहां दोनों का अच्छा समन्वय दिखाई देता है।
भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार है। साहित्य में रामायण महाभारत आदि भारतीय पुराणों की कथाओं का बाहुल्य है। पूजा उपासना कर्मकांड एवं प्रथा परंपराएं भारत से मिलती जुलती हैं। स्वर और व्यंजनों का क्रम भी वैसा ही है। मंदिरों तथा ऐतिहासिक स्थानों में उपलब्ध मूर्तियों भित्ति चित्रों शिलालेखों से भारत में प्रचलित परंपराओं का भली प्रकार दिग्दर्शन होता है और लगता है कि यह देश सांस्कृतिक दृष्टि से अभी भी भारत का अविच्छिन्न अंग है। कंबोडिया में 14वीं सदी का बना ईश्वरपुर में एक मंदिर है जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत हाथों पर उठाए जाने की प्रतिमा है। हेम श्रृंगार नगर के मंदिरों में हनुमान के कंधे पर बैठे हुए राम तथा सीता की अग्नि परीक्षा के भव्य चित्र हैं।
शिव विष्णु कार्तिकेय गणेश शालिग्राम सूर्य दुर्गा भवानी भगवती चतुर्भुजा सरस्वती गंगा इंद्राणी आदि की प्रतिमाएं स्तुतियां स्थापना एवं उनके लिए बने देवालयों के भी अनेकों प्रमाण उपलब्ध हैं।
कई जगह तो इन देवी देवताओं की तथा उस प्रदेश के स्थानीय देवताओं की मूर्तियाँ अभी भी स्थापित और पूजित हैं। पीछे राजा लोग अपने को तथा अपने पूर्वजों को भी देवता सिद्ध करने के लिए अपनी मूर्तियां भी बनवाने लग गए थे और उनका भी पूजन स्तवन होने लग गया था। कुल देवियों और कुल देवताओं का प्रचलन इसी प्रकार बढ़ गया।
राजवंश के ख्यातिनामा लोग प्रजाजनों द्वारा पूजे जाने लगे। प्राचीन कंबोडिया में समय समय पर संपन्न हुए विशालकाय यज्ञानुष्ठानों का भी वर्णन मिलता है। सम्राट ईशान वर्मन हर्ष वर्मन और राजेंद्र वर्मन अपने अपने समय के यज्ञों के होता यजमान बने थे। सूर्य वर्मन ने लक्ष होम तथा कोटि होम किए थे और पुरोहितों को विपुल दक्षिणा दी थी। मध्य देश नामक एक महिला द्वारा भी एक विशाल यज्ञ कराया गया था।
उन दिनों ऋषियों तथा तपस्वियों की कमी नहीं थी। इस क्षेत्र में नर और नारी समान रूप से प्रवेश करते थे।
मिन्नामल महीधर नामक पुरुष तपस्वियों तथा उमा इंद्रा नामक साधिकाओं का शिलालेखों में चमत्कारी वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म कंबोडिया में हिंदू धर्म का एक अंग बनकर ही रहा। उसकी ब्राह्मण धर्म से न तो पृथकता थी और न प्रतिस्पर्धा, वरन प्रचलित अनेक पंथ संप्रदायों की तरह बौद्ध धर्म भी हिंदू समाज का अविच्छिन्न अंग बनकर रहा और एक ही उद्यान में उगे अनेक वृक्षों की तरह वह भी समान रूप से पोषण पाता रहा और फलता फूलता रहा। उस काल में वहां वेद शास्त्र के ज्ञाता एवं यज्ञादि कर्मकांडों में निष्णात विद्वान ब्राह्मणों की अच्छी संख्या थी। संस्कृत भाषा का प्रचलन था।
प्राचीन पुस्तकों तथा शिलालेखों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग हुआ है। हस्तलिखित पुस्तकों में प्रायः भारत में प्रचलित धार्मिक पुस्तकों के ही अंश हैं।
साहित्य कला चिकित्सा तंत्र आदि पर जो ग्रंथ मिले हैं उन्हें एक प्रकार से भारतीय साहित्य की ही अनुकृति कह सकते हैं। ब्राह्मी लिपि का भारतीय वर्णमाला के अनुकूल प्रयोग होता था। यशोवर्मन के शासन काल में 100 महाविद्यालयों में उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख है। इनके साथ मंदिर और पुस्तकालय भी रहते थे। अन्य शासकों के शासन काल में विद्यालय तो थे पर उनकी संख्या का विवरण नहीं मिलता। उच्च कक्षाओं को पढ़ाने वाले उपाध्याय और छोटी कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक कहे जाते थे। प्राध्यापकों में सोमशिव शंकर स्वामी विनय पंडित जयमाला जयेंद्र फलप्रिय योगेश्वर अगस्त्य सर्वज्ञ मुनि जय महाप्रधान केशव आदि का गौरवास्पद उल्लेख है। अध्यापिकाओं में जनपदा राजदेवी तिलका इंदिरा देवी जयराज देवी आदि के नाम आते हैं।
इनमें से कुछ तो राज परिवारों से संबंधित थीं। फ्रांसीसी इतिहासकार कोडबार्ट तथा बर्गन के कंबुज तथा चंपा के संस्कृत लेख संकलन में कंबोडिया के प्राचीन इतिहास पर अच्छा प्रभाव डाला गया है। इन विद्वानों ने उपलब्ध अवशेषों तथा लेख उद्धरणों का हवाला देते हुए जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे यही सिद्ध करते हैं कि कंबोडिया प्राचीन काल में एक प्रकार से छोटे भारत की स्थिति में था।
वहां भारतीय धर्म और संस्कृति का ही पूरी तरह आधिपत्य था। विद्वान फिनो ने सुदूर पूर्व पत्रिका के भाग 25, 28, 29 में अंकोरवाद से प्राप्त लेख शीर्षक जो विवरण प्रस्तुत किए हैं, वे यही बताते हैं कि संसार के इस अद्भुत ध्वंसावशेष के निर्माण की प्रेरणा कथा तथा साधन सामग्री का भारत से ही आयात किया गया।
पुरातत्ववेता पामांतिये के चंपा तथा कंबुज के लेख प्रकाशन में जो भी निष्कर्ष हैं, उनसे अनाम तथा कंबोडिया में भारतीयता की जड़ें गहराई तक जमी हुई सिद्ध होती हैं।
अमोनिय द्वारा लिखित प्राचीन कंबुज का इतिहास और विगो के हिंद चीन और हिंदनेशिया के हिंदू राष्ट्र ग्रंथों से भी इस तथ्य का समर्थन होता है कि इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था तथा सांस्कृतिक उन्नति में भारतीयों का असाधारण योगदान रहा है। 9वीं-10वीं शताब्दी में कंबोडिया का स्वर्णिम युग था। उस वैभवशाली युग में प्रत्येक शासक ने अपनी ओर से इस क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रखा और क्रमशः अंकोरवाट अधिकाधिक विकसित होता चला गया।
समय के परिवर्तन में इस वैभव को अपनी काली चादर में छिपा लिया और मुद्दतों तक यह विशाल भवन उपेक्षित एवं अविज्ञात पड़े रहे और खंडहर बनते गए।
सन 1861 में एक फ्रांसीसी पुरातत्ववेता ने इन अवशेषों को ध्यानपूर्वक देखा और इस अद्भुत उपलब्धि पर हर्ष विभोर होकर नाचने लगा। प्राचीन अंकोर के ध्वंसावशेष 15 मील से अधिक भूमि परिधि को घेरे पड़े हैं। इस क्षेत्र को अंकोरवाट कहते हैं। यहाँ के अपूर्व भवनों को देखकर मनुष्य की आश्चर्यजनक निर्माण शक्ति पर अवाक रह जाना पड़ता है।
इसे संसार भर में उपलब्ध ध्वंसावशेषों में सबसे अधिक विशाल और बहुमूल्य कहा जा सकता है।
पुराने समय में जबकि यांत्रिक साधनों का अभाव था, किस प्रकार इतनी कलात्मक, इतनी विशाल, इतनी बहुमूल्य इमारतें बन सकी होंगी।
इस रहस्य पर आज के इंजीनियरों को आश्चर्य होता है। इसका महाप्रांगण पेरिस के प्रसिद्ध पैलेस द ला कांकोई से 4 गुना बड़ा है। भव्य भवनों की पत्थर से बनी लंबी दीवारें ऐसी लगती हैं मानो वे एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई हों। जोड़ तो हैं पर ये इतने हल्के हैं कि बिना विशेष जांच पड़ताल किए वे नजर ही नहीं आते। पत्थरों की नक्काशी देखते ही बनती है। प्रधान मंदिर के 4 विशाल स्तंभ इतने ऊंचे हैं कि उन्हें देखने के लिए गर्दन को ऊपर तक तानना पड़ता है। प्योरे लोती नामक जलयान के कप्तान ने अपने संस्मरणों में लिखा है, अंकोर को देखकर बुद्धि हतप्रभ हो जाती है। जब ऊपर चढ़ते हैं तो लगता है कि स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो लगता है कि मंदिर जमीन से ऊपर उठता चलता है। ऊंचाई के असीम दर्शन से बुद्धि ठगी सी रह जाती है। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। यह बड़ा सुंदर नगर है। कंबोजी जनता धार्मिक प्रकृति की है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत है। भारत में हिंदू साधुओं की तरह उस देश में भी बौद्ध भिक्षु झुंड के झुंड विचरण करते पाए जाते हैं। नाम पेन को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक पुरानी बस्ती जिसमें भारतीय धर्म की बसावट, बौद्ध पेगोडा हिंदू मंदिर तथा राज प्रसादों की भरमार है। दूसरी नई बस्ती यह फ्रांसीसी धर्म पर बसी है। इसमें प्रवेश करने पर ऐसा लगता है मानो यूरोप के किसी आधुनिक बसे नगर में घूम रहे हों।
पुरानी बस्ती का वैभव भी देखते ही बनता है।
राजा प्रसादों में बने गुंबज और उन पर रखे कलश बहुत दूर से दिखाई पड़ते हैं। महलों की दीवारों पर भारतीय पौराणिक गाथाओं के चित्र खुदे हैं।
एक भवन का 35 फुट चौड़ा 125 फुट लंबा फर्श ही चांदी का बना है। चांदी की तह आधा इंच मोटी है।
इसमें ठोस स्वर्ण की बनी करोड़ों रुपये मूल्य की बुद्ध प्रतिमा है जिसे राज परिवार के लोग पूजते हैं। नाम पेन से 80 मील दूर अंकोरवाट है।
इसे राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था।
इसके अवशेष मीलों तक बिखरे पड़े हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश की विशालकाय मूर्तियां कलाकुशल हाथों की बनाई हुई हैं।
शिल्पकला और वास्तुकला की दृष्टि से यह संसार भर के ध्वंसावशेषों में अद्वितीय है।
इनके सामने रोम मिश्र और यूनान के विशालकाय खंडहर भी तुच्छ प्रतीत होते हैं।
इस क्षेत्र में संस्कृत भाषा के अनेक शिलालेख बिखरे पड़े हैं।
बौद्ध धर्म का प्रचार होने पर उन्हीं में स्थापित की गई बुद्ध प्रतिमाएं भी विद्यमान हैं। चीनी इतिहासकारों के अनुसार अब से कोई 1500 वर्ष पहले केरल के राजा सूर्यदेव ने ऐतिहासिक अंकोरवाट के मंदिरों को बनवाया था।
शासकों की 3 पीढ़ियों ने उसे 70 वर्ष में बनाकर पूरा किया था। यह 21 वर्गमील में फैला हुआ है। इसे देखने को संसार भर के पर्यटक पहुंचते हैं। कंबोडिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने में इन पर्यटकों का बड़ा हाथ रहता है। संसार की कई हवाई जहाज कंपनियों ने यात्रियों के ठहरने के सैकड़ों कमरे वाले होटल बनवाए हैं। एयर फ्रांस द्वारा बनवाया होटल लगभग 500 कमरों का है। यूरोप के कई बड़े देशों की सीधी विमान सेवा अंकोरवाट के लिए पहुंचती है। चीन ने सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए एक हवाई अड्डा अपनी ओर से बनाकर कंबोडिया सरकार को भेंट किया है।
एक बार भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद वहां गए और अंकोरवाट को देखकर मुग्ध हो गए।
इस मंदिर में एक कमरा जादू जैसी विशेषता का है।
उसमें घुसकर कोई अपने हृदय पर हाथ मारे तो प्रतिध्वनि ओम जैसी गूंजेगी। शरीर के अन्य किसी भाग पर हथेली मारो तो वैसा गुंजन नहीं होता। एक बार पम जीरो जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचे थे और इस विलक्षणता को देखकर चकित रह गए थे।
ऐसी ही और भी कितनी ही विशेषताएं इस अवशेष में हैं। चूने का उपयोग कम ही हुआ है। पत्थर रखकर उसे इतनी मजबूती से बनाया गया है कि इतना लंबा समय बीत जाने पर भी उसमें हिलने डुलने की कमजोरी नहीं आई है।
खुदाई अभी भी चालू है।
हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जितनी कलापूर्ण इसमें बन पड़ी हैं, उसकी तुलना में भारत में बने कम मंदिर ही ठहरते हैं। मंदिरों, स्मारकों, दुर्गों, भवनों की शिल्पकला में पूरी तरह भारतीयता का समावेश है। वे ऐसे लगते हैं मानो भारत में बने हों अथवा भारतीयों ने वहां पहुंचकर बनाए हों। भारत में बनी इस प्रकार की इमारतों और कंबोडिया के इन भवनों में तुलना की जाए तो प्रतीत होता है कि किसी न किसी की हूबहू नकल करने का प्रयत्न किया है। समय ने बहुत कुछ पलट दिया है। अब वहां की जनता पर पहले जैसी हिंदू धर्म की छाप नहीं है। मुसलमान और ईसाई धर्मों ने भी अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। फिर भी जो कुछ बचा है उससे यह स्पष्ट है कि वहां बौद्ध और हिंदू संस्कृति का लोप नहीं हुआ है।
अभी भी जो बचा है उसे सींचा संभाला जा सके तो यह मुरझाया वृक्ष पुनः पूर्वकाल की तरह हरा भरा हो सकता है। देव प्राणम में मिले लेख से प्रतीत होता है कि यशोवर्मन के बनाए सौगाताश्रय विया विहार में वैष्णव और शैव धर्म की भांति ही बौद्ध धर्म भी पढ़ाया जाता था। सूर्य वर्मन के शासनकाल में हिंदू धर्म की भांति बौद्ध धर्म को भी राज्याश्रय मिला था। यही नीति अन्य शासक एवं विद्यालय भी अपनाते रहे थे। कंबोडिया की वर्ण व्यवस्था, नवीन जातियों का उद्गम, विवाह प्रथा, वेशभूषा, खान पान, वस्त्र आभूषण, पात्र, स्त्रियों की स्थिति, मृतक संस्कार आदि पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां ब्राह्मण धर्म प्रचार के लिए और क्षत्रिय शासन व्यवस्था के लिए पहुंचे थे।
उन्होंने विवाह उसी देश की स्त्रियों से किए और अपने वंश चलाए।
चीनी इतिहासकार पीलियो के अनुसार 1000 के करीब विद्वान ब्राह्मणों का आधिपत्य था। इनमें शिव कैवल्य, हिरण्यदास, अगस्त्य, दिवाकर, ऋषिकेश, वामशिव, शिवाचार्य, त्रिभुवनराज, लौज युधिष्ठर, जयेंद्र पंडित, योगीश्वर, पृथ्वींद्र पंडित, गुण पंडित, कवींद्र, विशालाक्ष आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। क्षत्रि वहां पहुंचकर विशुद्ध क्षत्रि नहीं रह गए थे, उनके विवाह शादी ब्राह्मणों के साथ होते थे। अस्तु, उन्हें ब्रह्मक्षत्र कहा जाता था। कितने ही राजाओं ने अपनी कन्याएं पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ विवाही थी।
इसी प्रकार कई ब्राह्मण कन्याएं भी राज परिवारों में सम्मिलित होकर क्षत्रिय संतान की माता बनी थी।
पहले वहां 4 ही वर्ण थे, पीछे उनके वंश सम्मिश्रण से 3 जातियां और बन गई।
इस प्रकार वहां 7 जातियों का सप्त वर्णों का प्रचार हो गया। इसका वर्णन इलियट की पुस्तक भारत का उसके इतिहासकारों द्वारा इतिहास पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया है। श्री चटर्जी की कंबुज में भारतीय संस्कृति का प्रभाव पुस्तक में इस समय वहां पुरुषों में धोती, कमर में फेंटा और कंधे पर दुपट्टा डालने का प्रचलन बताया गया है। उस काल के उपलब्ध चित्रों में तत्कालीन शासकों और नागरिकों को इसी वेशभूषा का अभ्यस्त दिखाया गया है।
महिलाएं लहंगा पहनती थी।
पिलियों की चे और टाकुअन की कथा में स्त्रियों के आभूषणों में हार, कर्णफूल, छल्ले, कंगन, बाजूबंद, करधनी, नूपुर आदि का उल्लेख है।
वे विशेष अवसरों पर मेहंदी रचाती थी।
पुरुष गले में हार और कानों में कुंडल पहनते थे। स्त्रियों में जूड़ा बांधने और माथे पर चंदन लगाने का रिवाज था। यह वेशभूषा विशुद्ध रूप से भारतीय परंपरा के अनुकूल है।
चीनी इतिहास की पुस्तक तांग वंश का इतिहास में तत्कालीन खाद्य पदार्थों, गीतवाद्य, नृत्य आदि का जैसा वर्णन है उससे स्पष्ट है कि उस समय वहां की प्रथा में पूरी तरह भारतीयता का समावेश था। मुर्दों को जलाने अथवा नदी प्रवाह करने, श्राद्ध तर्पण करके मृतात्माओं को संतुष्ट करने जैसे मरणोत्तर विधि विधान का वर्णन है।
मृतक के शोक में उनके वंशज सिर के बाल मुड़ाते थे।
विवाह अग्नि की साक्षी में उसकी परिक्रमा करते हुए संपन्न होते थे।
बच्चों के कान छेदने और सिर के बाल मुड़ाने के समय उत्सव होते थे। इन दिनों कंबोडिया का राजधर्म बौद्ध है। जनता प्रायः बौद्ध धर्मावलंबी ही है, पर पूजाग्रहों में वहां धनुषधारी राम और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं।
सरकारी मुद्रा पर हनुमान जी छपे हैं।
सेना के ध्वज पर भी हनुमान जी विराजे हैं।
राजधानी नामपेन के आधुनिकतम खेल स्टेडियम पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। हनुमान जी वहां के मानस देवता हैं।
कंबोडिया में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का ऐसा सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है मानो वे दोनों एक शरीर में जुड़े दो हाथ हैं। वर्मा और थाईलैंड की तरह ही कंबोडिया की वर्णमाला भी देवनागरी के अनुसार बनी है। अक्षरों की आकृति में थोड़ा अंतर है। वहां की भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रधानता है। यहां के विश्वविद्यालय में संस्कृत और पाली भाषा पढ़ाने की विशेष व्यवस्था है। सांस्कृतिक दृष्टि से कंबोडिया पूर्व एशिया के सभी देशों की तुलना में भारत के अधिक निकट है।
यह सारा क्षेत्र अमेरिका और चीन के शक्ति संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ है।
कंबोडिया इस खतरे से भयभीत है और तत्स्थता की नीति अपनाकर किसी प्रकार अपनी जान बचा रहा है। नामपेन तथा आसपास के नगरों में भारतीय भी बहुत हैं, उनमें से अधिकांश सिख धर्मानुयायी हैं। कितने ही गुरुद्वारे बने हैं और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। राजतिलक के अवसर पर थाईलैंड की तरह कंबोडिया के राजा को भी धोती कुर्ता पहनना पड़ता है। विशेष अवसरों पर भी वे इसी पोशाक को पहनते हैं। कंबोज की राजभाषा 14वीं सदी तक संस्कृत रही है, यह वहां पर उपलब्ध शिलालेखों से स्पष्ट है। वहां अभी भी बच्चों का मुंडन संस्कार बड़ी धूमधाम से होता है और कटे हुए बालों को ताम्रपत्र में बंद करके मैनकांग नदी में बहाया जाता है, जो वहां गंगा की तरह ही पवित्र मानी जाती है। कंबोडिया के शासकों का राज्याभिषेक वेदमंत्रों के उच्चारण के साथ शैव ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होता है।
उस समय राज्याधिकारी के एक ओर शिव की मूर्ति रखी जाती है और दूसरी ओर विष्णु की। ज्योतिषी हर शुभ कार्य का मुहूर्त निकालते हैं। सामान्यतया गुरुवार सर्व शुभ माना जाता है। दीक्षा संस्कार वहां भी होते हैं।
मांगलिक अवसरों पर महिलाएं रोली और अक्षत से मस्तकों पर तिलक लगाती हैं।
कंबोडिया की वर्तमान जनसंख्या मात्र 70 लाख है। वहां बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्राप्त है। वहां के प्रायः सभी नागरिक बौद्ध धर्मावलंबी हैं। नामपेन विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अध्ययन का विशेष प्रबंध है। कंबोडिया के सर्वेसवा राजकुमार सिंगनुक ने एक बार दुखी होकर भारी मन से कहा था, भारत हमारी माता है और चीन हमारा पिता।
दुर्भाग्य से हमारी माता ने हमारी परवाह करना छोड़ दिया और हम आश्रय विहीन होते जा रहे हैं।
सुवर्णद्वीप समूह, जिसे भारतीयों ने बसाया बढ़ाया। वर्तमान भारत की सीमा तक प्राचीन भारत सीमित न था, तब उसका विस्तार सुदूर पूर्व में फैले हुए द्वीप समूहों तक था। बर्मा, स्याम आदि देशों तक थल मार्ग से आवागमन था, अस्तु यह क्षेत्र तो सहज ही भारत का अंग था। इसके लिए पृथक नामकरण की आवश्यकता न थी। वे देश एक प्रकार से बृहत्तर भारत के प्रांत ही थे।
सुदूर पूर्व के समुद्र में फैले हुए देशों को उन दिनों अलग नाम दिया गया था।
उस क्षेत्र को सुवर्ण द्वीप कहते थे।
उसकी परिधि में छोटे बड़े सैकड़ों द्वीप आते हैं।
इन दिनों इस क्षेत्र को 1 मलेशिया, 2 जावा, 3 सुमात्रा, 4 वाली, 5 बोनियो, 6 सिंगापुर आदि नामों से संबोधित किया जाता है।
इनकी अपनी अपनी सीमाएं भी राजनीतिक उथल पुथलों ने बना दी हैं।
प्राचीन काल में इस पूरे क्षेत्र का एक ही नाम था, सुवर्ण द्वीप।
इस क्षेत्र में भारतीयों ने चिरकाल पूर्व प्रवेश किया था और उसे बसाने, समुन्नत बनाने में अनवरत श्रम किया।
उन दिनों नौकायन ही एकमात्र साधन इन लंबी यात्राओं के लिए उपलब्ध था।
कितने कष्ट सहकर हमारे पूर्वज वहां पहुंचते होंगे और उन वीरान क्षेत्रों को बसाने, विकसित करने में अपने आप को कितना गलाते घुलाते होंगे, उसके सही स्वरूप की यदि कल्पना की जा सके तो उनकी परमार्थ परायण महानता में किसी प्रकार का संदेह न रह जाएगा। इतिहास के पृष्ठों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि भारत के महत्वाकांक्षी व्यापारी, राजनेता, धर्म प्रचारक अपनी पहुंच की सीमा तक विदेशों में आते जाते रहे हैं और अन्यान्य देशों की भौतिक एवं आत्मिक प्रगति में भौतिक योगदान देते रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को प्राचीन काल में स्वर्ण द्वीप कहा जाता था।
संभव है वहां की स्वर्णिम आभा शोभा को, प्रकृति संपदा को देखकर यह नाम दिया गया हो।
जहां तहां सुनहरी बालू का पाया जाना भी एक कारण हो सकता है। प्राचीन किंवदंतियों में वहां सोने की खानों के होने का भी वर्णन है।
कारण जो भी रहा हो, भारत में इस क्षेत्र का नाम स्वर्ण द्वीप प्रचलित था। जावा आदि देश इसी नामकरण के अंतर्गत आते थे। वाल्मीकि रामायण कांड 2 अध्याय 11 में युवद्वीप जावा का उल्लेख है।
महाजनक जातक, साहित्य सागर, बृहत कथा श्लोक सार आदि ग्रंथों में व्यापारियों द्वारा उस क्षेत्र की यात्राएं किए जाने का उल्लेख है।
अन्य कई संस्कृत ग्रंथों में इस भूभाग का स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप, स्वर्णकूट, स्वर्णकुंड, हिमकूट आदि नामों से उल्लेख है। कौटिल्य अर्थशास्त्र और मिलिंद ग्रंथों से भी पता चलता है कि न केवल वहां भारतीयों का ही आना जाना था वरन वे वहां बस भी गए थे। इतिहासकार स्मिथ ने अपने ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में सिद्ध किया है कि हिंद, चीन और हिंद एशिया के आदि निवासी भारतीय मूल के थे।
उनकी आकृति और परंपरा भारत में पाई जाने वाली सुमेर, चम, मुंडा और खस जातियों से मिलती जुलती थी।
भाषा विशेषज्ञों का कथन है कि इस समूचे क्षेत्र में फैली हुई भाषाओं की शब्दावली का आदि स्रोत भारतीय भाषा ही रही है।
शब्दों में विश्लेषण करने से अधिकांश शब्द भारत से ही उधार गए हैं। हिंदू जावानीज ग्रंथों के अनुसार भी जावा में आदि निवासी भारतीय मूल के ही थे।
उन्हीं के आमंत्रण और सहयोग का आश्रय पाकर पीछे भारत से अनेक जत्थे वहां जाते और बसते रहे। कैलिन, बेल्स, स्टाइन के अनुसार मलाया की सभ्यता का विकास भारतीय सभ्यता के प्रकाश, सहयोग एवं समन्वय के आधार पर ही होता है।
स्ट्रटर हाउस के अनुसार वर्मा के पेगुंग और प्रोम प्रांतों को उड़ीसा वासियों ने जाकर आबाद किया था।
जावा के पुरातन शिलालेख दक्षिण भारत की पल्लव लिपि में लिखे हुए मिले हैं। हिंद चीन के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। विद्वान सिडी ने अपने ग्रंथ ईस्ट वाक डी लैंड कनिष्क ग्रंथ में सुदूर पूर्व की पुरातन स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए यही निष्कर्ष निकाला है कि यह समूचा क्षेत्र भारतीयों द्वारा विकसित किया गया था।
पुराणों तथा जातक ग्रंथों में स्वर्णद्वीप का वर्णन मिलता है।
सुदूर पूर्व में फैले हुए द्वीप समूह के लिए यह स्वर्णद्वीप अथवा स्वर्णभूमि शब्द प्रयुक्त हुआ है। इन द्वीपों का तात्कालिक नाम अंगद्वीप, युवद्वीप, मल्यद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, वराहद्वीप, नागद्वीप आदि था।
इनका वर्णन जिस रूप में हुआ है इससे मलाया, जावा, सुमात्रा, कताह, अंडमान, निकोबार, संखेद्वीप आदि के साथ उनकी संगति पूरी तरह बैठ जाती है।
वायु पुराण, हरिवंश पुराण, जातक ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में इस क्षेत्र का जिस प्रकार वर्णन है उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत ही इनके विकास का श्रेयाधिकारी है। विश्व के इतिहास वेता पाइमोनियस, पेरिप्लस, प्लिनी, डियोनिसस, पेरिगेटिस, सोलिनस, मार्टियानस, कैप्ला, सेविल, इसिडोर, थियोडफ, निसेफोरस आदि ने सुवर्ण द्वीप का जिस प्रकार वर्णन किया है उससे यह तथ्य सामने आता है कि वहां सर्वप्रथम भारतीय सभ्यता का प्रकाश पहुंचा और उसने उसे क्रमशः अधिक ऊंची स्थिति में पहुंचाने में योगदान दिया।
अरबी और चीनी लेखकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। भारतीय राजनेताओं के उस क्षेत्र में जाने, बसने और सुशासन की स्थापना में योग देने के उल्लेख इतिहास के पृष्ठों पर मौजूद हैं। चंपा देश में राजकुमार विदेह का पहुंचना, काशी देश के राजकुमार का अराकान में जाना, इंद्रप्रस्थ के राजकुमार का कंबोडिया में पैर जमाना, श्रीपाद वर्मन का जावा में सुशासन आरंभ करना जैसे अनेक प्रमाण ऐसे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि भारत में बड़े राजकुमार को गद्दी मिलती थी और छोटे राजकुमारों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती थी।
अस्तु, वे समीपवर्ती विदेशों में अपनी कुशलता का परिचय देने के लिए नए क्षेत्रों का निर्माण करते थे। इतिहासकार इत्सिंग ने 7वीं सदी के अपने विवरण में इस बात की विस्तृत चर्चा की है कि 5वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दी में भारतीय राजकुमार दलबल सहित चिलपोतों द्वारा इस स्वर्णद्वीप क्षेत्र में पहुंचते रहे और छोटे बड़े शासन स्थापित करते रहे।
पुरातत्वीय खोजों से यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो चुका है कि दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश निवासियों की संस्कृति पाषाण युग की संस्कृति थी जब वे भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आए। यह तथ्य इंडोनेशिया के जावा एवं सुमात्रा द्वीपों पर तथा इंडो चाइना के अनाम कंबोडिया और मलय प्रायद्वीप पर लागू होता है। सदर सेलेबीस में बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा जो अमरावती कला की है प्राप्त हुई है। यह पाषाण युग की आदिम संस्कृति से कुछ ऊपर स्तर की संस्कृति की है।
हिंदू उपनिवेशकर्ता जब पहली बार सुवर्ण भूमि में आकर बसे तब उनका यहाँ के आदिम निवासियों से घनिष्ठ संबंध कायम हुआ जिसके फलस्वरूप यहाँ की आदिम संस्कृति अपने से उच्च स्तर की भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। बोनियो, जावा एवं मलय प्रायद्वीप में प्राप्त संस्कृत शिलालेखों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म तथा राजनैतिक एवं सामाजिक संस्थाओं एवं मान्यताओं ने इन सुदूर देशों पर अपना प्रभुत्व कायम किया था। बोनियो के राजा मूल वर्मन के कुटेई शिलालेखों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि उस समय का राज दरबार तथा समाज हिंदू संस्कृति के रंग से सराबोर था।
पश्चिम जावा में प्राप्त शिलालेखों से भी यह स्पष्ट होता है कि वहां का समाज और राज दरबार हिंदू संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित किया गया था। यहां हमें हिंदू देवताओं के जैसे विष्णु, इंद्र, ऐरावत के उल्लेख प्राप्त होते हैं।
इस देश में भारतीय महीने, खगोल विद्या तथा दूरी नापने की भारतीय पद्धति प्रचलित थी।
इसके अतिरिक्त नए हिंदू उपनिवेशों में भूगोल संबंधी भारतीय नामों जैसे चंद्रभागा, गोमती आदि का प्रयोग वहां की नदियों के नामों के लिए मिलता है। बोनियो तथा मलय द्वीपों में विभिन्न देवताओं की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वे शिलालेखों के प्रमाणों की पुष्टि करती हैं। बोनियो में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, नंदी, स्कंद और महाकाल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और मलय प्रायद्वीप में दुर्गा, गणेश और नंदी की मूर्तियां मिली हैं।
जावा में स्थित टुकमस के ध्वंसावशेष से यह प्रमाणित होता है कि पौराणिक धर्म उस क्षेत्र में जोरों के साथ प्रचलित था।
यहाँ की विष्णु एवं शिव की मूर्तियाँ अपनी संपूर्ण विभूतियों के साथ चित्रित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के शिलालेखों में गंगा की पावनता का उल्लेख मिलता है। इन मूर्तियों और शिलालेखों से यह प्रमाणित होता है कि सुवर्णद्वीप के इन देशों में ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म भी प्रचलित था।
समग्र रूप से देखने पर शिलालेखों से यह विदित हो जाता है कि यहाँ पर संस्कृत भाषा और साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ के अधिकांश विवरण उत्कृष्ट एवं त्रुटिहीन संस्कृत भाषा में लिखे हैं। भारतीय लिपियाँ सर्वत्र प्रयुक्त होती थीं।
मूर्तियों की बनावट में भारतीय कला की छाप पूर्ण रूप से मिलती है।
चीनी विवरणों से पुरातत्वीय प्रमाणों की पुष्टि एवं पूर्ति होती है। सबसे पहले हमें चीनी यात्री फाहियान का लेख मिलता है, जिसके अनुसार यव द्वीप में ब्राह्मण धर्म जोरों से प्रचलित था और वहां बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ही कम था। फाहियान के साथ जहाज द्वारा चीन जाने वाले 200 व्यापारी ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे, परंतु शीघ्र ही बौद्ध धर्म ने जावा पर अपना प्रभाव डाला, जो कि सन 519 में संकलित चीनी विवरण से प्रकट होता है। उसके अनुसार कश्मीर के बौद्ध भिक्षु राजकुमार गुणवर्मन ने जावा पहुंचकर वहां की राजमाता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद जावा के राजा ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात शनैशन बौद्ध धर्म पूरे जावा में फैल गया।
गुणवर्मन का नाम और उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। 424 में चीनी भिक्षुओं ने गुणवर्मन को चीन में आमंत्रित करने के लिए सम्राट से अनुरोध किया।
फलस्वरूप सम्राट ने गुणवर्मन और जावा के राजा के पास अपना दूत भेजा। गुणवर्मन हिंदू व्यापारी जहाज नंदिन में बैठकर सन 431 में नानकिंग पहुंचे।
गुणवर्मन के वृतांत से यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म का जावा में किस प्रकार प्रवेश हुआ और वहां 5वीं शताब्दी में उसकी जड़ किस प्रकार जमी।
दूसरे चीनी यात्री ईट सिंह के लेखानुसार 7वीं शताब्दी के अंत तक बौद्ध धर्म का विस्तार सुवर्णद्वीप के अन्य क्षेत्रों हो गया था। चीन से भारत जाते हुए ईट सिंह श्रीविजय में 6 मास रुका था और उसने वहां शब्द विद्या संस्कृत व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की थी। भारत से चीन लौटते समय भी वह श्री विजय में ठहरा था। यहाँ रहकर उसने बृहद बौद्ध ग्रंथों का, जिन्हें वह भारत से लाया था, अनुवाद और प्रतिलिपि की थी। ईट सिंह के कथनानुसार दक्षिणी सागर के देशों के बहुत से राजा और सरदारगण बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे और उसके प्रशंसक थे। उस समय श्रीविजय में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 1000 से अधिक थी। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य के भक्त एवं उपासक सुवर्णद्वीप में थे। इस क्षेत्र में भारतीय ज्ञान विद्या एवं संस्कृति के विभिन्न केंद्र कायम थे, जो कि विदेशियों को आकर्षित करते थे। इस दिशा में श्रीविजय का महत्व बहुत अधिक था। यह बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र तो था ही, साथ ही यह सुवर्णद्वीप में महायान शाखा का सबसे पहला प्रमुख केंद्र था, जिसका व्यापक प्रसार बाद में संपूर्ण सुवर्णद्वीप में हुआ।
बहुत से प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षुगण इस क्षेत्र में पहुंचे और नई दिशाओं में बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया।
शताब्दी में ही नालंदा के आचार्य धर्मपाल, जो कि कांची दक्षिण भारत के रहने वाले थे, सुवर्णद्वीप पहुंचे। शताब्दी के प्रारंभिक काल में दक्षिण भारतीय बौद्ध भिक्षु वज्रबोधि सीलोन से चीन जाते समय श्रीविजय में 5 महीने तक रुके। वे और उनके शिष्य अमोघ वज्र, जो उनके साथ थे, तंत्र विद्या के आचार्य थे।
उन्होंने चीन में इस विद्या का प्रवेश कराया।
चीनी विवरणों तथा गुणवर्मन धर्मपाल और वज्रबोधि के वृत्तांतों से यह स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि भारत और सुवर्णद्वीप के बीच नियमित आवागमन स्थापित था। लंगसु से संबंधित वृत्तांत से मालूम होता है कि भारत और सुवर्णद्वीप के बीच सामाजिक संबंध भी कायम था। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से सुवर्णद्वीप का केवल धर्म ही प्रभावित नहीं था, वरन वहां के राजनीतिक सामाजिक विचार तथा प्रशासकीय तंत्र भी स्पष्ट रूप से प्रभावित थे।
इस संदर्भ में टांटान राज्य के उल्लेख से पता चलता है कि उसने चीन में अपने राजदूतों को 530, 535 और 666 में भेजा था।
यहाँ के राजा का कौटुंबिक नाम था कपसचय क्षत्रिय और उसका निजी नाम शिलिगदी श्रृंग था।
उसके 8 मंत्रियों में से बड़े मंत्री ब्राह्मणों में से चुने जाते थे।
युद्ध में वे हमेशा शंख फूंकते थे और ढोल बजाते थे।
चीनियों के उल्लेख के अनुसार स्वर्णद्वीप में प्रचलित कल प्रथा भी भारतीय मूल की है। उनके मृतकों को जलाया जाता था और भस्म को सोने के पात्र में भरकर समुद्र में डुबो दिया जाता था। सुदूर पूर्व के देशों में भारतीय उपनिवेशवादियों ने अपने मूल देश भारत के सांस्कृतिक विचारों का प्रसार किया। आज भी इन देशों में भारतीय धर्मकथा भवन निर्माण कला के स्पष्ट चिन्ह प्राप्त होते हैं। इन देशों में भारतीय धर्म के विकास क्रम का अध्ययन एक बहुत ही रोचक विषय है।
भारत के दक्षिण पूर्व और सुदूर पूर्व के उपनिवेशों बर्मा और स्याम को छोड़कर में ब्राह्मण धर्म के जिस स्वरूप का प्रसार अधिकतर हुआ था, वह था सनातन ब्राह्मण धर्म, जिसने हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति के विकास क्रम को प्रभावित किया।
भारत में बौद्ध और सनातन ब्राह्मण धर्म के विकास और ह्रास का जो काम चल रहा था, उसकी प्रतिध्वनि सुवर्ण भूमि के भारतीय उपनिवेशों के धार्मिक इतिहास में भी होती थी, जो कि वहां बड़ी संख्या में प्राप्त शिलालेखों, धार्मिक ग्रंथों तथा देवी देवताओं की मूर्तियों की सहायता से सिद्ध होती है।
सुवर्ण भूमि में ब्राह्मण धर्म के शैव और वैष्णव संप्रदायों में शैवमत वैष्णव मत से कहीं अधिक प्रभावशाली था और उसने धार्मिक विकास क्रम की संपूर्ण प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित किया था। शैव मतानुयों की तुलना में वैष्णव मतानुयों तथा बौद्धों का प्रभाव कम था, परंतु उनके बीच किसी प्रकार के धार्मिक संघर्ष का कोई चिन्ह प्राप्त नहीं होता, वरन उनके बीच परस्पर सद्भावना और समन्वय के प्रयास के ही पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं। सुवर्ण द्वीप में हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार। हिंदू समाज का बुनियादी आधार वह वर्ण व्यवस्था प्रणाली है जो कि जावा, मदुरा और सुमात्रा में प्रचलित थी।
इसकी जानकारी प्रारंभिक विवरणों में चतुवर्ण शब्द तथा यहाँ के साहित्य एवं शिलालेखों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्दों के बार बार के उल्लेख से स्पष्ट है। इन द्वीपों में यह वर्ण व्यवस्था अपने मूल शुद्ध स्वरूप में कायम थी, जैसा कि मनु संहिता में इसका विवरण है एवं जिस रूप में यह प्राचीन काल में प्रचलित थी। बाली और लोम्बोक में प्राचीन वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप आज भी प्रचलित है वह इस प्रकार का है। इन द्वीपों के लोग चार वर्गों में विभाजित हैं। इनमें से पहले तीन वर्गों के लोग द्विजाति तथा शूद्र एक जाति हैं।
ब्राह्मण लोग शिव उपासक अथवा युद्ध उपासक के रूप में दो वर्गों में विभाजित हैं।
बाली में राजकीय वंश के लोग वैश्य वर्ण के होते हैं, न कि क्षत्रिय वर्ण के। बाली में शूद्रों को कौलस कहा जाता है, पर इन्हें अछूत या अपवित्र नहीं माना जाता। यहाँ के राजा भारतीय राज दरबारों की शान शौकत तथा चमक दमक का अनुसरण करते थे। जावा में पान खाने की आदत भी भारत की तरह थी। यहाँ के पुतली नाचों के विषय दो महान भारतीय ग्रंथ रामायण तथा महाभारत से लिए जाते हैं। इन द्वीपों में प्रचलित कविता, नाटक, संगीत तथा नृत्य को अंतः प्रेरणानी संदेह भारत से प्राप्त हुई है।
हिंद जावानी कला, भवन एवं मंदिर निर्माण दोनों ही दृष्टि से अनुपम है।
मंदिरों में जो धार्मिक चित्रण किया गया है, उनमें जो कलापूर्ण मूर्तियां पाई जाती हैं, वे विशेष रूप से मंदिर कला के सुंदर नमूने हैं। स्मारकों में से कुछ सुंदर नमूनों का परिचय इस प्रकार है। जावा में धार्मिक इमारतों को चंदी नाम से पुकारा जाता है। इनमें से कुछ को छोड़कर सब मंदिर हैं। इन मंदिरों का नक्शा मोटे रूप में करीब करीब एक सा ही होता है। मंदिरों की कलापूर्ण सजावट, अलंकरण तथा नक्काशी आदि सब भारत से ली गई हैं। जावा के मंदिरों की विशेषता यह है कि इनमें खंभे बिल्कुल नहीं हैं और इनके मेहराब भारत की तरह क्षितिज के समानांतर हैं। मध्य जावा में जहां 8वीं शताब्दी ई-शून्य के बीच मंदिरों का निर्माण हुआ, उनमें ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों के मंदिर हैं। डीन पठार पर, जो कि 6500 फीट ऊंचा है और चारों तरफ पर्वतों से घिरा है, बहुत से मंदिर हैं जो महाभारत के वीरों और वीरांगनाओं के नाम पर बने हुए हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि ये मंदिर जावा में सबसे प्राचीन हैं और संभवतः 8वीं शताब्दी ई-शून्य के हैं। डीन कला को देखने से गुप्तकाल के भारतीय मंदिरों का स्मरण हो आता है। डीन पठार पर प्राप्त मूर्तियां ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की हैं।
यहाँ शिव, दुर्गा, गणेश, ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां हैं। इस तरह ये मंदिर ब्राह्मण धर्म के थे, जिनमें शैव मत की प्रमुखता थी।
इस तथ्य की पुष्टि उपलब्ध अवशेषों से होती है। प्रम्बनन घाटी में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों का समूह मौजूद है, जो कि मध्य जावा की कला का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करता है।
यह क्षेत्र आधुनिक जोगमकीर्ता और सूर्यकीर्ता जिलों की सीमा पर स्थित है।
इस क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर चंदी कलसन और चंदीसर्रा और चंदीसेम है। चंदीसेम बरबुदर को छोड़कर सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। मुख्य मंदिर, जो कि आंगन के बीच में है, 40 मंदिरों से चारों ओर से घिरा हुआ है।
यहाँ कुल मिलाकर 250 मंदिर हैं, जिनमें से मुख्य मंदिर भी शामिल हैं।
ये मंदिर संभवतः 9वीं शताब्दी के बने हैं। कैद मैदान में कुछ बहुत ही सुंदर कलापूर्ण सुंदर प्राचीन स्मारक हैं, जो 9वीं शताब्दी के हैं। ब्राह्मण एवं बौद्ध सुंदर मंदिरों के खंडहर यहाँ बड़ी संख्या में हैं। चंदी मैदूर एवं चंदी पवन, जो कि बहुत कुछ सुरक्षित रूप में कायम है, हिंद जावानी कला का बहुत सुंदर नमूना प्रस्तुत करते हैं।
परंतु इन सबों का महत्व विश्व विख्यात बौद्ध मंदिर बरबुदर के सामने धूमिल हो गया है, क्योंकि वह संपूर्ण दुनिया में एक बड़ा आश्चर्य माना जाता है।
इसकी समता का मंदिर शायद कंबोडिया का अंकोर बाट के अतिरिक्त दूसरा दुनिया में नहीं है। बर्बुदर मंदिर का निर्माण 750 और 885 शून्य के बीच में माना जाता है, जो कि शैलेंद्र राजाओं के संरक्षण में निर्मित हुआ था। बर्बुदर का मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बना है।
यह हिंद जावानी कला का सर्वोच्च स्मारक है।
इस विशाल मंदिर की दीवारों पर उभरी आकृतियों की नक्काशी द्वारा गौतम बुद्ध, जातक, अवदानों एवं सुधन कुमार की कथाएं चित्रित की गई हैं। बर्बुदर में बुद्ध की तथा मैदूर में बोधिसत्वों की प्रतिमाएं हिंद जावानी कला की सर्वोपरि कृतियां हैं। जावा के ब्राह्मण धर्म के मंदिरों में से कोई भी बर्बुदर की तुलना में किंचित नहीं ठहर सकता। फिर भी प्रम्बनन घाटी में स्थित लर्जोनबर्ग समूह के मंदिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ माने जा सकते हैं। इसमें 8 मुख्य मंदिर हैं, पर कुल मंदिरों की संख्या 156 है। पश्चिम कतार में स्थित 3 मुख्य मंदिरों के बीच का मंदिर सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें शिव की मूर्ति है। इसके उत्तर में विष्णु तथा दक्षिण में ब्रह्मा की मूर्तियां हैं।
बीच का शिव मंदिर सबसे अधिक सुंदर है।
इसकी दीवालों पर रामायण की कथा प्रारंभ से लेकर लंका यात्रा तक चित्रित है। लर्जोनबर्ग मंदिरों की कला की सबसे बड़ी विशेषता एवं सुंदरता उनकी उभरी आकृति की नक्काशी है, जो कि बर्बुदर के बौद्ध मंदिर की कला से किसी भी रूप में कम नहीं है। चंदी मैदूर की बुद्ध तथा अवलोकितेश्वर की मूर्तियां बहुत ही सुंदर ढंग से गढ़ी गई हैं, जो कि मध्य जावा की प्राचीन कला की शैली के अनुरूप हैं। चंदी बनेम की मूर्तियां यद्यपि ब्राह्मण धर्म की हैं, फिर भी वे बर्बुदर की कला से मिलती हैं, न कि लर्जोनबर्ग से। पूर्वी जावा में चंदी के दल का स्मारक है, जो कि राजा अनुशक्ति का समाधि मंदिर है। सिंसारी के उत्तर पश्चिम में सिंसारी का मीनार मंदिर है। इस काल का बहुत महत्वपूर्ण स्मारक चंदी जेगो है। यह राजा विष्णुवर्धन का शासन मंदिर है, जिसमें इसे बौद्ध देवता के रूप में चित्रित किया गया है।
यह सन 1268 के कुछ पहले या बाद का मंदिर है। पूर्वी जावा का सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रसिद्ध स्मारक पंतरन प्राचीन नामपलक के मंदिर समूह हैं।
संभवतः यह 14वीं शताब्दी और मध्यकाल का मंदिर समूह है। इनकी दीवालों पर भी रामायण और कृष्णान की उभरी आकृति की नक्काशी चित्रित है। पूर्वी जावा में स्थित पंतरन एवं मध्य जावा के लर्जोनबर्ग के मंदिरों में जो उभरी आकृति की नक्काशी द्वारा रामायण को चित्रित किया गया है, उनकी तुलना करने से बड़ा अंतर जान पड़ता है। मध्य जावा की मंदिर कला से पूर्वी जावा की कला निश्चित रूप से घटिया है। पूर्व जावा की सभी मूर्तियों में सिंहसारी की प्रज्ञा पारमिता की मूर्ति सबसे अधिक सुंदर है, जो पूर्वी जावानी मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना है। देवताओं की साधारण मूर्तियों के अतिरिक्त उनकी ऐसी भी विशिष्ट मूर्तियां बनाई गई हैं कि जीवित व्यक्तियों के चित्रों के समान ही दिखाई देती हैं।
स्वर्णद्वीप की निर्माण कला भारतीय निर्माण कला के अनुरूप ही धर्म की पूरक मानी जा सकती है।
वहां पर जितने भी स्मारक अभी तक प्राप्त हुए हैं, वे सब धार्मिक स्वरूप के हैं। प्राचीन काल में मलय प्रायद्वीप तथा पूर्वी द्वीप समूह में जो बहुत मंदिर बने थे, वे सब अब प्रायः खंडहर हो चुके हैं।
जावा, सुमात्रा, बाली और बोनिया इन बड़े द्वीपों के अतिरिक्त इंडोनेशिया द्वीप समूह के दो और छोटे किंतु महत्वपूर्ण द्वीप हैं सेलेबीज और फिलीपाइन।
इनमें भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण स्मारक मौजूद हैं।
फिलीपाइन का सुंदर शिव मंदिर और सेलेबीज की बुद्ध प्रतिमा तो देखते ही बनती है। सेलेबीज की कर्म नदी तट पर बसे सिकिंदिंग स्थान के समीप एक विशाल बुद्ध प्रतिमा मिली है, जो वहां के म्यूजियम में रखी गई।
यह पीतल की बनी संसार भर की बुद्ध प्रतिमाओं में सर्वश्रेष्ठ और भव्य है।
परिधान वस्त्र की सिलवटें इतनी स्पष्ट है कि तत्कालीन धातु कला की उन्नति पर आश्चर्य होता है। कला विशेषज्ञ इसे लंका में विनिर्मित मानते हैं। ऐसी ही अन्य उपलब्धियां उस देश में भारतीय धर्म की पहुंच का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। 7वीं शताब्दी के आरंभ में एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारतीय वंश का उद्भव हुआ। उसका नाम था शैलेंद्र। इस वंश ने अपनी महत्वाकांक्षाएं सुदूर पूर्व के द्वीप समूहों की ओर मोड़ी और उस क्षेत्र में बिखरी हुई अस्त व्यस्त शासन व्यवस्था को एक छत्र चक्रवर्ती तंत्र के नीचे लाने का निश्चय किया।
कहना न होगा कि यह वंश प्रतापी, शूरवीर, सशक्त और हर दृष्टि से क्रिया कुशल था।
ये लोग सशक्त जल सेना लेकर कलिंग से रवाना हुए। उन्होंने देखते ही देखते बर्मा जीत लिया। इसके बाद आंधी तूफान की तरह मलाया प्रायः द्वीप, सुमात्रा, जावा आदि जीतते चले गए।
इन देशों में से अधिकांश में हिंदू राजाओं का राज था और कहीं कहीं पर स्थानीय लोगों का शासन था,
पर शैलेंद्रों को एक छत्र शासन अभीष्ट था, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में एक शासन की स्थापना की और समस्त विजित क्षेत्र का नाम कलिंग रखा। सारे क्षेत्र में एक लिपि, एक भाषा चलाए। इसमें संस्कृत शब्दों के साथ साथ स्थानीय शब्दों का भी समावेश था। इस पूर्व क्षेत्र की नागरी का संक्षिप्त नाम पूर्व नागरी रखा। एक संस्कृति, एक भाषा, एक शासन का यह प्रयास शैलेंद्रों ने जिस उत्साह से चलाया, उसे देखते हुए उन दिनों यह प्रतीत होने लगा था कि यह सारा क्षेत्र भारत प्रदत्त एकता के एक सूत्र में बंधने ही वाला है। शैलेंद्र बौद्ध धर्मानुयायी थे, पर उन्होंने उसे हिंदू धर्म का ही एक अंग मात्र माना और उसका सुधरा हुआ रूप समझा।
उन्होंने तत्कालीन हिंदू धर्म प्रधान जनता में कोई मतभ्रम पैदा नहीं किया।
बौद्ध और हिंदू अभिन्न रूप से एक ही हैं, यही सिद्ध किया।
शैलेंद्रों की समृद्धि, शक्ति और कुशलता की अरब इतिहासकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है।
सुलेमान, इब्न रोते, अबजैद हसन, मसूरी, अलबरूनी आदि ने अपने संस्मरणों में जो कुछ लिखा है, यदि वह सही हो तो यही मानना पड़ेगा कि शैलेंद्र वंशीय नेपोलियन और सिकंदर जैसी शक्ति बनकर उभरे थे।
उन्हें बड़े परिमाण में सफलता भी मिली।
उन्होंने न केवल शासन तंत्र सुधारा वरन सुदूर क्षेत्र को भारत के साथ व्यापक एवं समृद्धि के सूत्रों में भी बांधा। दुर्भाग्य से भारत में उन दिनों विशेष रूप से पाई जाने वाली फूट महाव्याधि ने वहां भी आघेरा। सुदूर पूर्व में चोल, चालुक्य, पांड्रय वंशीय हिंदू राजा राज करते थे। उनने शैलेंद्रों को सहयोग देने की अपेक्षा विग्रह की नीति अपनाई। फलस्वरूप एक प्रकार से गृह युद्ध आरंभ हो गया और छोटे बड़े युद्ध जहां तहां उभरने लगे और वे लगभग 100 वर्षों तक चले। फलतः दोनों ही पक्ष निर्बल होते चले गए। जहां पुरातन राजतंत्रों को भारी क्षति पहुंची, वहां शैलेंद्र भी शक्तिहीन होते चले गए।
चीनी इतिहास मिंगकालीन वर्णन से पता चलता है कि उस क्षेत्र पर चीनी सरदारों की ललचाई हुई नजर पड़ी और उन्होंने जावा आदि कितने ही क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
जिन शैलेंद्रों ने बर्बुदूर और कलसन जैसे प्रख्यात मंदिरों का निर्माण किया था, जो 700 वर्ष तक उस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे, उनका 15वीं सदी आते आते पूरी तरह अंत हो गया। छुटपुट और कमजोर सरदारियां ही जहां तहां राज कर रही थी। अव्यवस्था और असुरक्षा का जगह जगह बोलबाला था। शैलेंद्रों के अवसान के उपरांत उस क्षेत्र में एक नया राज्य उभरा, मलक्का। उस पर परमेश्वर नाम का राजा राज्य करता था।
उसके लड़के ने मुसलमान युवती से विवाह करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदलकर सिकंदर शाह रख लिया। कहते हैं कि मुसलमान पत्नी करने के अपराध में हिंदू समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया। इससे मुसलमान बन जाने के अतिरिक्त उसे और कोई चारा न रहा।
प्रतिशोध की भावना से उसने कट्टरपंथी हिंदू राजाओं पर कड़े आक्रमण किए और सुमात्रा, पहंग, इंद्रगिरी आदि को जीतकर मलक्का नामक इस्लामी राज्य बनाया।
इसमें स्याम का भी कुछ भाग जीतकर मिला लिया गया था।
सन 1511 तक इस वंश ने राज्य किया। सिकंदर शाह के बाद उनके वंशज मुजफ्फर शाह, मंसूर शाह, अलाउद्दीन, सुल्तान अहमद ने राज्य किया। इस अवधि में इन लोगों ने इस्लाम धर्म को उस क्षेत्र में फैलाने का भरपूर प्रयत्न किया और उसमें आशातीत सफलता भी पाई।
अरब देशों के व्यापारी उस क्षेत्र में आरंभ से बहुत दिन पहले से ही बसने लगे थे।
उन्होंने धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन में मलक्का नरेशों को पूरा सहयोग दिया।
फलत शासन तंत्र इस्लाम धर्मानुयायियों के हाथ चला गया और जनता को भी उसी राह पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ा। गुजरात और ईरान से मुसलमान व्यापारी उस क्षेत्र में भारी संख्या में पहुंचे और मलक्का सुल्तान के अनुग्रह से धन कमाने तथा धर्म विस्तार के लिए हर संभव उपाय करने में लगे रहे।
उस बीच हिंदू शासकों की, हिंदू सभ्यता की दयनीय दुर्दशा होती चली गई। विशालकाय धर्म केंद्र धूल-धूसरित होते और खंडहर बनते चले गए।
15वीं सदी में प्रवेश हुआ इस्लाम धर्म इस क्षेत्र में 300 वर्षों की अवधि में परिपुष्ट हो गया और 18वीं सदी में सुदूर पूर्व के समस्त क्षेत्र में उसका वर्चस्व छा गया।
सन 1511 में पुर्तगालियों ने मलक्का पर आक्रमण किया। इसके बाद डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज भी उस क्षेत्र में प्रवेश करते चले गए। इन लोगों का आर्थिक एवं राजनीतिक वर्चस्व उस क्षेत्र पर बढ़ने लगा, जिसका अंत द्वितीय महायुद्ध के बाद ही हुआ। अब सुदूर पूर्व के प्रायः सभी देश स्वतंत्र हैं।
उनमें इस्लाम धर्मानुयायियों की संख्या अधिक है। इसके बाद बौद्धों का नंबर आता है।
हिंदू धर्म तो नाम मात्र को ही शेष है। स्वर्णद्वीप समूह तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र के कुछ विशिष्ट देशों तथा क्षेत्रों पर अगले पृष्ठों में थोड़ा अधिक प्रकाश डाला जा रहा है, जिससे पाठकों को अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। भारतीय धर्मानुयायी जावा। स्वर्णद्वीप समूह की स्थिति का सिंहावलोकन पिछले पृष्ठों पर प्रस्तुत किया गया है। स्वभावतः उस क्षेत्र की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता हमें होगी।
अस्तु, उस क्षेत्र में बिखरे देशों के संबंध में कुछ और भी विशेष विवरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ज्योग्राफी ग्रंथ के लेखक H00 ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि जावा निवासी रक्त की दृष्टि से भारतीयों के वंशज हैं।
उनकी धार्मिक मान्यताएं ब्राह्मण धर्म से प्रभावित हैं। जावा की भाषा पर संस्कृत का स्पष्ट प्रभाव है। इतिहासकार टालेमी के अनुसार दूसरी शताब्दी में भारत और जावा के अत्यंत घनिष्ठ संबंध थे। उस क्षेत्र में प्रचलित एक जनश्रुति के अनुसार प्रथम शताब्दी में सौराष्ट्र का अजिशिक योद्धा जावा पहुंचा था और उसने वहीं सुविस्तृत शासन तंत्र की स्थापना की थी। पीछे कलिंग और गुर्जर देश के निवासी वहां पहुंचते रहे। जावा की वर्तमान राजधानी बटाविया है। उसके समीपवर्ती क्षेत्र में चिरुअतन, जम, कवोन, कोपी, तग आदि स्थानों में जो शिलालेख मिले हैं उनमें कितने ही हिंदू प्रचलनों की चर्चा के साथ साथ राजा पूर्ण वर्मा के 22 वर्षीय शासन के क्रियाकलापों का भी वर्णन है।
जावा की लंबाई 612 मील है और चौड़ाई 51 से लेकर 131 मील तक है। इन दिनों जो छोटे द्वीप जावा में गिने जाते हैं उन सबको सम्मिलित करने पर उसका क्षेत्रफल 51,000 वर्ग मील हो जाता है। इसमें 4,000 से लेकर 12,000 फीट तक की ऊंचाई वाले पहाड़ भी हैं। उनमें कई ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। कृषि के लिए यहाँ की भूमि बहुत ही उत्तम और उपजाऊ है।
जावा में प्रचलित एक परंपरा के अनुसार वहां पर हिंदू राज्य सन 56 EC में स्थापित हुआ था।
तालिमी ने दूसरी शताब्दी में इसका उल्लेख जावादियान नाम से किया है, जिससे यह मालूम होता है कि इस द्वीप का भारतीय नाम दूसरी शताब्दी से भी बहुत पहले का है, पर किसी हालत में दूसरी शताब्दी ईशून्य के शुरू में जावा एक हिंदू उपनिवेश के रूप में कायम हो चुका था, क्योंकि सन 132 में वहां के राजा देववर्मन ने अपना एक राजदूत चीन भेजा था। पश्चिमी जावा में हिंदू राज्य की स्थापना के संबंध में अधिक जानकारी हमें पूर्णवर्मन के 4 शिलालेखों से प्राप्त होती है।
उसके पूर्व उसके पिता राजाधिराज एवं पितामह राजर्षि राज्य करते थे।
उक्त शिलालेख 5वीं शताब्दी के माने जा सकते हैं।
मध्य जावा में भी एक हिंदू राज्य कायम था जिसे चीनी लोग होलिंग कलिंग कहते थे।
इस क्षेत्र में भारतीय प्रांत कलिंग वर्तमान उत्कल के निवासियों का प्रभुत्व था।
जावा में एक दूसरा हिंदू राज्य भी कायम था जिसका चीनी नाम होलोतान था। इस राज्य ने एक दूत को सन 430 से 452 के बीच चीन को भेजा था।
जावा में भारतीय साहित्य प्राचीन काल में प्रचलित था।
इस साहित्य के फलस्वरूप हिंद जावानी साहित्य का उदय हुआ, जो कि उस द्वीप में हिंद उपनिवेशीकरण की एक प्रमुख विशेषता थी।
भारत के बाहर किसी भी देश में भारतीय साहित्य का अध्ययन इस रूप में नहीं किया गया जैसा कि इस देश में।
इसके फलस्वरूप इतना अधिक लाभ इसके अध्ययनकर्ताओं को हुआ और उसके बहुत अधिक परिणाम निकले।
जावा में हिंदू उपनिवेशों के प्रथम काल में पूर्णवर्मन के शिलालेख से स्पष्ट है कि इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का ज्ञान यहाँ के लोगों को था। द्वितीय काल में उक्त ज्ञान का पहले से कहीं अधिक गहन और व्यापक रूप में प्रसार हुआ। यह न केवल शिलालेखों से प्रमाणित होता है वरन उस काल में विनिर्मित स्मारकों से भी सिद्ध होता है। ये स्मारक दोनों ब्राह्मणों और बौद्ध धर्मों के हैं। इन स्मारक मंदिरों में जिन मूर्तियों की नक्काशी की गई है वे अधिकांश में इन भारतीय ग्रंथों के वर्णनों से ही संबंधित हैं। इस काल में हिंदू जावानी साहित्य के 3 ग्रंथों की रचना हुई।
हिंदू उपनिवेशीकरण के तृतीय कालखंड सन 1000 से 1500 के भीतर हिंद जावानी साहित्य ने पूर्वी जावा में कदिर याडह सिंगश्री और मजहपित के राजाओं की संरक्षता में उल्लेखनीय प्रगति और उन्नति की।
मजहपित में मुस्लिम शासन कायम होने के बाद जावा के लोग बड़ी संख्या में बाली चले गए और वहां उन्होंने साहित्यिक कार्य जारी रखा। प्राचीन जावानी साहित्य में कविता रचना एवं संस्कृत पद्य रचना के नियमों का पालन किया गया है और इन कविताओं का मुख्य विषय भारतीय साहित्य से लिया गया है। इसमें संस्कृत शब्दों और श्लोकों का बहुत उपयोग किया गया है। इस काल का सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अमरमाला का पुरानी जावानी भाषा में लिखा संस्करण है। इसी काल का प्राचीन जावानी भाषा में लिखा रामायण ग्रंथ है।
यह हिंद जावानी साहित्य की सबसे सुंदर एवं प्रसिद्ध रचना है।
यह संस्कृत में लिखी रामायण का अनुवाद नहीं वरन स्वतंत्र रचना है। इसका प्रतिपाद्य विषय संस्कृत की मूल रामायण से बिल्कुल मिलता है, पर इसमें अग्नि परीक्षा के बाद सीता और राम का मिलन बताया गया है।
जावा का दूसरा महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ महाभारत का गद्य अनुवाद है, जिसकी रचना राजा धर्मवंश के समय में हुई। सन 996 में विराट पर्व का अनुवाद किया गया।
महाभारत का अनुवाद जावानी भाषा में होने से यह उस देश में लोकप्रिय हो गया।
इस महान ग्रंथ ने अन्य कई साहित्यिक रचनाओं को विषय सामग्री प्रदान की। ऐसी रचनाओं में प्रथम है अर्जुन विवाह, जिसकी रचना मधुकन्व ने राजा औरलंग की संरक्षता में की थी।
इसका विषय महाभारत से लिया गया है, जिसमें निमात कवच के विरुद्ध युद्ध में अर्जुन देवताओं की मदद करता है। किदिरकाल के शुरू की 2 पद्य रचनाएं कृष्णान और सुमन सानक हैं। कृष्णान में रुक्मिणी हरण की कथा है, जबकि सुमन सानक में अज की रानी इंदुमती की मृत्यु संबंधी कथा है।
राजा जयभय के राज्यकाल सन 1135-1157 में प्राचीन जावानी साहित्य की बहुत उन्नति हुई। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध एवं बड़ा ग्रंथ भारत युद्ध है, जो कि मूल संस्कृत महाभारत के उद्योग पर्व, भीष्म एवं द्रोण पर्व, कर्ण पर्व एवं शल्य पर्व पर आधारित स्वतंत्र रचना है। इसके मूल रचयिता मपुसेदा थे, पर इनके अपूर्ण कार्य की पूर्ति मपुपौलुह ने की थी। मपुपौलुह ने एक दूसरे पद्य का ग्रंथ हरिवंश की भी रचना इसी राज्यकाल में की थी। इस ग्रंथ का विषय कृष्ण जरासंध युद्ध है। राजा कामेश्वर द्वितीय 1185-0 के संरक्षण में अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ स्मरदहन की रचना की गई।
इस ग्रंथ का विषय कालिदास के कुमार संभव पर आधारित है।
राजा कामेश्वर द्वितीय के राज्यकाल में ही दूसरे प्रसिद्ध ग्रंथ भौम काव्य की रचना हुई। इसमें प्रतिपाद्य विषय राजा पृथ्वी के पुत्र भौम द्वारा इंद्र तथा अन्य देवताओं को परास्त करना है। प्रपंच द्वारा सन 1365 में मिजपहित के समद राज्यकाल में एक अनुपम पद्य ग्रंथ नागर कृरागम की रचना की गई।
अभी तक जिन पद्य ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, उनका प्रतिपाद्य विषय अधिकतर भारतीय महान ग्रंथ रामायण, महाभारत और पुराणों से लिया गया था। इनके अतिरिक्त एक अन्य जावानी ग्रंथ नीतिशास्त्र कविन है, जिसे अब बाली में नीतिसार कहा जाता है। इसके बहुत से जावानी श्लोक भारतीय मूल ग्रंथ में मिलते हैं।
इसकी नीति वचन संस्कृत के नीतिसार, पंचतंत्र, चाणक्य, शतक के विषयों से मिलते हैं।
अन्य ग्रंथों में सूर्य सेवन, गरुडेय मंत्र इत्यादि हैं, जो कि धार्मिक तथा सैद्धांतिक हैं। एक अन्य ग्रंथ कोराश्रम है, जिसमें महाभारत के प्रतिपाद्य विषय में काफी परिवर्तन किया गया है। इसी कोटि का दूसरा ग्रंथ सार समुच्चय है, जो कि महाभारत के अनुशासन धर्म के नीति उपदेशों का प्राचीन जावानी भाषा में अनुवाद है। इसमें महाभारत तथा अन्य भारतीय ग्रंथ जैसे पंचतंत्र इत्यादि के संस्कृत पद्यों को उद्धृत किया गया है। लोक कथाओं पर तंत्री नाम का ग्रंथ है, जो कि हितोपदेश एवं पंचतंत्र पर आधारित है, यद्यपि उसमें कई नई कहानियां भी हैं। इस वर्ग की रचनाएं न केवल जावानी भाषा में वरन बाली, स्यामी, लाओसियन भाषाओं में भी हैं। किदुंग वर्ग की रचनाएं रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कथाओं पर आधारित है।
संग सत्यवन प्रसिद्ध सावित्री प्रसंग पर जावानी भाषा का पद्य ग्रंथ है।
भारत के दो धर्मों ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार स्वर्णद्वीप में हुआ था, और हिंदू उपनिवेशीकरण के प्रारंभिक काल में ही इन दोनों धर्मों ने अपनी जड़ें वहां की भूमि में जमा ली थी।
जैसे जैसे शताब्दियां बीतती गईं, भारतीय धर्मों ने अपने पूर्ण प्रभाव की विजय पताका स्वर्ण भूमि में फैला दी। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि वे भारतीय उपनिवेश श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास एवं धार्मिक क्रियाओं की दृष्टि से अपनी मातृभूमि भारत की प्रायः पूर्ण प्रतिलिपि थे। आठवीं शताब्दी के आरंभिक काल में ब्राह्मण धर्म का पौराणिक स्वरूप जावा में दृढ़ता के साथ जम चुका था।
इसके अनुसार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव, उनकी दिव्य शक्तियों तथा उनसे संबंधित अनेक देवी देवताओं की पूजा का विधान है, जो कि जावा के साहित्य, शिलालेखों तथा मंदिर स्मारकों के अध्ययन से स्पष्ट रूप में प्रकट हैं। गणेश की मूर्ति जावा में बहुत प्रचलित थी, जो कि शिव पार्वती के पुत्र हैं।
युद्ध देवता कार्तिकेय भी, जो शिव पार्वती के पुत्र हैं, जावा में प्रसिद्ध थे।
शिव की पूजा लिंग के रूप में भी की जाती थी।
कुछ राजाओं के राज्यकाल में विष्णु की पूजा को बहुत ऊंची प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त था। उनकी शक्ति श्री या लक्ष्मी को चार भुजा वाली, कमल, अन्ना वाली एवं माला हाथों में लिए हुए दर्शाया गया था।
विष्णु के बहुत से अवतारों, विशेषकर कृष्ण, राम, मत्स्य, वराह एवं नरसिंह को मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया था।
ब्रह्मा की मूर्तियां अपेक्षाकृत कम संख्या में थी। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की एक साथ सम्मिलित त्रिमूर्ति जावा में प्राप्त है।
जावा में एक मतारा गुरु की मूर्ति बहुत लोकप्रिय है।
इसको शिव महायोगिन का ही प्रतिरूप माना जाता है।
जावा में अगस्त्य की पूजा का भी बहुत प्रचलन था, जो कि शिलालेखों से ज्ञात होता है। इन प्रमुख देवों तथा देवियों के अतिरिक्त अन्य छोटे देवों की मूर्तियां भी जावा में उपलब्ध हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं के प्रायः सभी देवताओं की मूर्तियां जावा में मिलती हैं। इस संबंध में क्रॉफर्ड का निम्नलिखित विवरण, जो एक शताब्दी पूर्व लिखा गया था, किसी प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। पीतल तथा पाषाण की इतने विभिन्न प्रकार की असली हिंदू मूर्तियां जावा में उपलब्ध हैं कि मेरा ख्याल है कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों के उन सभी देवी देवताओं की मूर्तियां जावा में मौजूद हैं, जिनकी मूर्तियां बनना उपयुक्त है। जावा में भारतीय ग्रंथों पर आधारित धार्मिक साहित्य प्रचुर रूप में उपलब्ध है।
उससे प्रकट होता है कि किस तरह पौराणिक हिंदू धर्म के अध्यात्म ज्ञान, पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं एवं दर्शन ने जावा में अपना पूर्ण प्रभाव जमा लिया था। सातवीं शताब्दी के अंतिम काल में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा संपूर्ण स्वर्णद्वीप में प्रचलित थी, परंतु आठवीं शताब्दी में जावा एवं सुमात्रा में शैलेंद्र राजवंश के समय हीनयान के स्थान पर महायान शाखा का प्रभुत्व स्थापित हो गया।
इसी काल में बरबुदूर व अन्य भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ।
जावा और सुमात्रा में महायान शाखा जनता का बहुत ही लोकप्रिय धर्म बन गई थी। स्वर्ण द्वीप में उन दिनों बौद्ध धर्म का एक सुदृढ़ केंद्र स्थापित हो गया था। बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ने स्वर्णद्वीप को प्रतिष्ठा तथा महत्व का दर्जा प्रदान किया था और उसे भारत तथा अन्य बौद्ध देशों से निकट संबंध में जोड़ा था।
बंगाल के बौद्ध प्रचारकों का जावा के बौद्धों पर गहरा प्रभाव था।
यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बंगाल के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अतिश दीपंकर शताब्दी ई0 और कांची के बौद्ध विद्वान धर्मपाल शताब्दी ई0 जो कि नालंदा में आचार्य थे, बौद्ध साहित्य के अध्ययन के लिए स्वर्णद्वीप गए थे।
जावा में बौद्ध साहित्य के अध्ययन के सबूत में न केवल महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति है, वरन बरबुदूर और दूसरे धार्मिक स्मारकों की मंदिर निर्माण प्रणाली भी है, जिससे यह प्रकट होता है कि बौद्ध धर्म के सभी अंगों का विशेष ज्ञान वहां के बौद्धों को था। भारत में महायान बौद्ध धर्म को बाद में जो स्वरूप प्राप्त हुआ वह जावा में भी प्रचलित हो गया था।
शिव और बुद्ध का निकटतम पारस्परिक संबंध जावानी धर्म की विशेषता थी।
कुंजकर्ण तथा सूत्सोम ग्रंथों में दोनों देवों को एक ही देव के रूप में चित्रित किया गया है। आधुनिक बाली धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि बुद्ध शिव के अनुज हैं। दोनों धर्मों के सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध कायम है।
इस प्रकार जावा में शिव बुद्धवाद प्रचलित था। इसके अतिरिक्त शिव विष्णु तथा बुद्ध तीनों का भी एक अखंड रूप माना जाता था। इसी प्रकार उनकी शक्तियों को भी एक ही शक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता था। ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि जावा में ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत का कलिंग नामक व्यक्ति दलबल सहित स्वर्गद्वीप में पहुंचा था। उसने व्यापार के साथ स्थानीय लोगों में घनिष्ठता बढ़ाकर धर्म का विस्तार किया था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वस्तुतः यज्ञकर्ता शब्द का अपभ्रंश है। जिन दिनों यहाँ भारतीय संस्कृति का प्राधान्य था तब वहाँ यज्ञानुष्ठानों की भी धूम रही होगी। तदनुसार उस नगरी का नाम यज्ञकर्ता जकार्ता पड़ा होगा।
इसी प्रकार अन्य प्रमुख नगरों का भी नामकरण हुआ है। जोग जकार्ता प्रमनम चंडी कलाशन आदि नाम ऐसे ही हैं जिनमें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का संकेत है।
ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में बौद्ध धर्म वहां पहुंचा। हीनयान और महायान शाखाओं का यहां प्रसार हुआ, पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म टकराए नहीं, उनने मिलजुल कर अपना कार्य जारी रखा।
जावा में जो शिलालेख मिले हैं वे चौथी शताब्दी के हैं और उनमें वहां के पूर्ण वर्मा नरेश के राज्य का वर्णन है। चीन के प्राचीन अभिलेखों से स्पष्ट है कि सन 502 में सुमात्रा पर गौतम नाम के राजा का शासन था।
फाहियान के लेखानुसार सन 420 में काश्मीर के राजकुमार गुणवर्मन उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने जावा में बौद्ध धर्म का महाविद्यालय स्थापित किया था।
दो चीनी विद्वान इस क्षेत्र में विद्याध्ययन के लिए आए थे। उन्हें अपने विवरणों में इस क्षेत्र में प्रस्तुत सुंदर शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है। सन 664 में द्विनिंग जावा के हुआन भद्र विद्यालय में पढ़ने आया था और इत्सिंग ने सन 671 में सुमात्रा के पालेक बंग नगर के महाविद्यालय में संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए प्रवेश किया था। जावा में रामलीला अभिनय में भाग लेना बहुत ही गौरवास्पद माना जाता है।
जोग जकार्ता के सुल्तान ने यह अधिकार अपने हाथ में रखा कि रामायण नृत्य नाटकों में उसका ज्येष्ठ पुत्र सदाराम की भूमिका का अभिनय करे।
जेम्स फर्गुसन के अनुसार जावा में हिंदू लोगों का शासन ईसा की प्रथम शताब्दी में ही जम गया था। स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लिखा है कि सुदूर पूर्व के द्वीपों में भारतीय लोगों के शक्तिशाली जत्थे आए और उन्होंने उस क्षेत्र में कितनी ही उत्साहपूर्वक हलचलें आरंभ की।
जावा के इतिहासकारों ने देश के उन उत्थानकर्ताओं का नाम किल्लिंग लिखा है जिसे कलिंग शब्द का अपभ्रंश ही कहना चाहिए। भारत के कलिंग देश के निवासी वहां ईसा से एक शताब्दी पूर्व पहुंचे थे।
उन्होंने अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक नया संवत्सर चलाया था जो कि ईसवी सन से 75 वर्ष पुराना है।
J0F0 स्कंडल को जावा के वेजी स्थान में जो शिलालेख मिले थे उनमें कलिंग राज्य का स्पष्ट उल्लेख है।
यूं जावा की अपनी भाषा जावानी भाषा है, पर प्राचीन धर्म ग्रंथ एवं शिलालेख जिस पवित्र भाषा में लिखे मिलते हैं वह संस्कृत की एक शाखा ही कही जा सकती है। रामायण और महाभारत की कथाओं से वहां का प्राचीन साहित्य भरा पड़ा है। उस देश के निवासियों का विश्वास है कि महाभारत जावा की भूमि पर ही हुआ था। उस देश में देवालयों के जो खंडहर पाए गए हैं उनमें से कुछ के नाम चंडी चंडी शिव चंडी विष्णु चंडी बध चंडी अर्जुन चंडी भीम चंडी घटोत्कच चंडी सरस्वती चंडी सूर्य हैं। जावा की भाषा में चंडी चंडी का अर्थ मंदिर होता है।
वहां के पर्वतों के नाम सुमेरु, अर्जुन, रावण और नदियों के नाम सरयू, वृंदा, प्रयाग, भगवंता आदि यही बताते हैं कि ये भारतीय नामकरण हैं।
सन 1478 में जावा का राजा ब्रह्म विज्ञान था, मुसलमानों ने उसे मार डाला और उस देश पर कब्जा कर लिया।
वे भी अधिक दिन पैर जमाए न रह सके।
सन 1554 में पुर्तगालियों ने मुसलमानों को मार भगाया और स्वयं उसे हथिया लिया। इसके बाद डच लोगों का दांव लगा और वे जावा के शासक बन बैठे। विद्वान अलाइस की ही मोनोग्राफी ऑन दी एलिफेंट गार्ड में जावा में उपलब्ध गणेश प्रतिमाओं पर प्रकाश डालते हुए उस देश के प्राचीन निवासियों को हिंदू धर्मानुयायी ही बताया है।
इसके अतिरिक्त वन दी रामायण एज स्कल्पचर्ड इन टेलिफिस इन जावानीज टेम्पल इज टू दी लाइफ ऑफ बुद्धा ऑन दी स्तूप ऑफ बोरोबुदुर थ्री बोरोबुदुर आर्कियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ग्रंथों में जावा क्षेत्र में फैले हिंदू धर्म के प्राचीन कालीन विस्तार पर अच्छा प्रभाव डाला गया है। श्री हिमांशु भूषण के इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन दी लिटरेचर ऑफ जावा एंड वालीज में भी इसी प्रकार की बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध हैं। जारी रखें।